रास्ता वो मार्ग बता रहे हैं। बूढ़े तो हो चुके हैं, सिर पका है, शरीर भी पक जाएगा कल, और अंत में समय भी पक जाएगा। जैसे पका हुआ फल वृक्ष के ऊपर रहना चाहे तब भी नहीं लग सकता, तब भी नहीं रह सकता, और एक बार वो फल वृक्ष के छूट जाने के बाद वो फिर से नहीं लग सकता, क्योंकि वो पक गया है। वैसे हम भी, हमारा शरीर भी, हमारा समय भी, जिस दिन जब पक जाएगा ना, तब अपने आप ही अलग हो जाएगा, और अलग होने के बाद फिर दोबारा वो। तो उससे पहले मन और भोगों के विषयों के साथ का जो हमारा संबंध है, जो हमें दुखी कर रहा है, हमें बंधन में डाल रहा है, हमें आसक्त कर रहा है, उसको धीरे धीरे हटाते जाओ, उसको धीरे धीरे अपने स्वरूप में आने के लिए समझदारी के साथ कुछ अपने जीवन को देख कर उसमें से हटने का हमारा प्रयास होना चाहिए। कि भाई हटो, बहुत भोग लिया, बहुत कर लिया, खा भी बहुत लिया, त्याग, अब नहीं, हम तो खा चुके, अब आप लोग खाओ, छोटे छोटे हैं, ऐसी वृत्ति लगानी पड़ेगी। मगर क्या है, मैं बूढ़ा हो गया तो क्या हो गया, हमारे लिए पहले रख दो, बाद में तुम खाओ, बस यही दुख का कारण। मगर समझ से भाई, हमने बहुत खा लिया, अब आप लोग खाओ, आप नए हैं, आपके लिए, बस ऐसी समझ हमें शांति देगी। या कोई छीन लेगा हमारा भाग तो क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, झगड़ पड़ेंगे उससे, मेरा क्यों ले लिया, अरे भाई पहले ही ले ले, मेरे से छीनने से पहले उसको दे दो, ले भाई, हमें भी आनंद होगा, लेने वाले को देखो हमारे चाचा जी कितने अच्छे, हमको दे दिया, और वो भी कहेंगे देखो भाई तेरे को मिल गया, मैंने तेरे को दे दिया, कितना अच्छा, दोनों में सुख है, दोनों में आनंद है। पकड़ रखने में दोनों को दुख अशांति, वो दे नहीं रहा है, वो मेरे से छीन रहा है, और दे देने में देने वालों को भी आनंद, लेने वालों को भी। त्यागा शांति निरंतरम, त्याग में अनंत शांति है, हमेश की शांति है, निरंतर शांति है। जब इतना समझे तब वो जीव जीव भाव से छूट करके आत्म भाव तक के तरफ वो पहुंच पाता है, और जिसको आत्म भाव प्राप्त हो गया, जो अपने घर में आ गया, उसको बाहर की गर्मी, बाहर की ठंडी, बाहर की बारिश उसको कुछ नहीं कर सकती, न भीगेगा, न तपेगा, न ठंडी से दुखी होगा, क्योंकि अपने घर में आ गया है। बस जीव भाव को छोड़ करके, जीव भाव से मन इंद्रियों और विषयों का संबंध छोड़ करके अपने घर में चले आओ, अपने स्वस्वरूप में आकर के बैठ जाओ। जो बाहर की जो अशांति है, जो दुख है, जो भ्रमणा है, जो आवेश है, आपत्ति, वो सब अपने आप दूर हो जाएगी। किवाड़ के बाहर खड़ी रहेगी, बाहर हम जाएंगे तब वो हमारे को चिपकेगी ना, बाहर जाना ही नहीं है। ये है आत्मा। मन और विषयों से अलग कैसे हो सकते हो, ब्रह्मा जी इसका उत्तर नहीं दे सके तो भगवान स्वयं कहने लगे हैं, हमारा आत्मा है, हमारी जो सूक्ष्म चेतना है वही भगवान का अंश है। भगवान स्वयं विचारों के द्वारा हमारे आत्मा के अंदर आए, वो हंस स्वरूप बने उड़ करके, और कोई समझदारी हमारे मन में, हमारे चित्त में, हमारे अंतःकरण में, हमारे आत्मा में पहुंची, हम स्वयं प्रभु का स्वरूप बन गए। आत्मा के तक पहुंचने की हमारी यात्रा कब होगी वो हमको पता होनी चाहिए। इंद्रियों की तरफ, मन के तरफ, भोगों की तरफ हमारी यात्रा है दुनिया में, उसको जीवन यात्रा कहेंगे, लेकिन हमारे स्वस्वरूप के तरफ वापस आने के लिए, क्योंकि बहुत दूर निकल गए हैं, इतने दूरी पर निकल गए हैं कि हम हमारा पता ही हम भूल गए कहाँ पर है, कहाँ रहता था मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है, वही भूल चुके। ऐसी जीवन यात्रा देहाध्यास की, भोगों की, दुनियादारी की, भौतिकता की, इतने दूरी पर जो जन कोशों तक दूर निकल गए, इतना नहीं, जन्म जन्मांतर से हमारे स्वस्वरूप से बहुत आगे निकल, बहुत दूर निकल गए, पिछड़े गए, पिछड़ गए, फिर भी वापस लौटना हो तो लौट सकते तुरंत। जो जन कोशों तक गए हुए हैं, भगवान कहते हैं कि चुटकी बजाने में देर नहीं लगती है, वैसे ही आपको अपने स्वरूप में वापस आने में देर नहीं लगेगी। जीवन यात्रा में भटकते भटकते जन्म जन्म की देर लग जाएगी, लेकिन वापस बस एक संकल्प मात्र कर लो मन से। जितनी इच्छाएं आपने मन से इस जगत के भोगों को भोगने की और घूमने की, दौड़ भाग करने की, जितनी आपने मन की शक्ति का उपयोग किया है, उतनी आवश्यकता नहीं है अपने आत्मा की तरफ जाने में। दुनिया के भोगों के तरफ दौड़ने में आपको बहुत ही शक्ति लगानी पड़ती है, बहुत समय भी लगाना पड़ेगा, पर समय का भी उपयोग करना पड़ेगा। समय, शक्ति और संपत्ति तीनों का व्यय होगा दुनिया के पीछे भागने के लिए, परंतु अपने स्वस्वरूप में वापस लौटने के लिए न समय, न शक्ति, न संपत्ति किसी का भूल नहीं, क्योंकि आखिर में स्वस्वरूप है, अपना स्वरूप है, वो आपके पास से कुछ नहीं चाहे, आपका कोई नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन जब भी दुनिया के पीछे दौड़ने के लिए आप भागे, तो समझ लेना आपका सब कुछ छीन लेगा, समय भी छीना जाएगा, शक्ति और संपत्ति भी छीनी जाएगी। इसलिए भगवान कहते वापस लौटो, चले आओ अपने स्वरूप में, अपने घर में, आपके पास में कुछ नहीं जाता, क्योंकि घर अपना है, स्वरूप अपना है। जो माँ बेटे के पास, बेटा माँ के पास दौड़ जाएगा, तो माँ उससे कुछ चाहेगी नहीं, बस अकेले बेटे को चाहिए, बस मेरा पुत्र, मेरा संतान मिल गया, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं मांगेगी। वैसे अपने स्वस्वरूप की तरफ वापस लौटेंगे ना, तब वो कुछ भी इच्छा नहीं रखे, कोई अपेक्षा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, बस चले आओ अपने आप के स्वरूप में, वापस घर आओ। भगवान तो कहते हैं बजाई चुटकी और आ गए अपने में, कुछ नहीं चाहिए आपको, दुखी आप दुख भी नहीं हो सकते। क्षिप्रम भवति धर्म, जैसे चुटकी बजाने में देर नहीं लगती, वैसे अपने स्वस्वरूप में वापस आने में देर नहीं लग सकती। क्षिप्रम, भगवान कहते हैं इतना दुराचार करने पर भी अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। बस जिसने मुंह मोड़ लिया भोगों से, विषयों से, दुनिया से, तुरंत ही उसके पीछे ही अपना स्वरूप खड़ा हुआ है। दुनिया से मुंह मोड़ लो और पीछे घूम जाओ, पीछे आपका स्वस्वरूप आपके साथ में ही, कहीं दूर गया ही नहीं। अंदर चले गए, कर दो दरवाजा खिड़की बंद, बस बाहर की दुनिया आपको कुछ नहीं कर सकती। तो ये है मन और विषयों के साथ का लगाव और अलग अलग। भगवान स्वयं हंसा अवतार बन करके हंस गीत के द्वारा हमको बता रहे हैं, मन और भोगों से हम अलग कैसे हो सकते हैं। हमारी वृत्ति उसको पृथक करने की चिंता ही नहीं रहेगी आपको, क्यों करनी पड़ेगी। कहते कि बाबा मुझसे एक होकर मन और विषय दोनों को छोड़ दे, मन को भी छोड़ दे, मन छूट गया तो विषय भी अपने आप ही छूट जाएंगे, मिट्टी है, घड़ा है। घड़ेपन को छोड़ दो, मिट्टी हो जाएगी, लेकिन मिट्टी मिट्टी ने घड़े का आकार, घड़े का रूप पकड़ लिया है। घड़ा दुखी है, कहीं आगे पीछे लग गया, किसी ठेस लग गई, कहीं जोर से पटका गया तो फूट गया। तो मिट्टी और घड़ा दोनों को छोड़ करके अपने चेतन स्वरूप में स्थित हो जाए, दोनों से पर हो जाए। नाम रूपात्मक जब तक हमारे में है अध्यास, तब तक हम दुखी होते रहेंगे। सारा दुख, जो कुछ दुख है, वो देह के अंदर का जो हमारा अहम भाव है, इसके कारण है। मैं हूं, मेरा है, और मेरा है जब तक किया तब तक वो आपको दुखी करेगा। क्यों? क्यों? आपका उसके साथ लगाव है, आपने उसको मेरा मान लिया है, इसलिए वो मानने की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये मेरा है ऐसा मान लिया, उसकी कीमत क्या? दुख, उसको पकड़ रखा। जो उसको छोड़ दिया तो आपको कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी, आप दूर हो। सारा दुख देह में अहम भाव के कारण है। जब तक ऐसा करते रहेंगे तब तक दुखी। अपने स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं, क्या हूं। न कहीं दुख है, न कहीं बंधन है, आप स्वयं मुक्त हैं, नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा है, न मृत्यु है न जन्म है। यही भगवान हंस गीता के द्वारा हमारे को इतना सुंदर मार्ग बता रहे हैं कि जीवन का जो अंतिम छोर है उसको कैसे जी। बालपन में तो हम आनंद लिया, स्वतंत्रता का आनंद लिया बचपन में, तो न कुछ काम था न कुछ धंधा था, बिल्कुल बच्चा जैसे बालक स्वतंत्र खेलता है आनंद से अपने मौज में, वो किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता, और उसको न कुछ बंधन होता है न कोई काम होता है, बच्चा खेलता है। जैसे जीवन का एक प्रारंभ का छोर ऐसे आनंद में गया, मुक्त गया, वैसे ही जब जीवन का अंतिम छोर जो है उसको कैसे हम अच्छा बनाए। भगवान ने पहले कह दिया है, बालक वत अपना जीवन बना लो। बचपन में जैसा स्वतंत्र मुक्त आनंद का समय था, वैसे ही नित्य मुक्त हमारे जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त कर ले। तो जैसे अनासक्त होकर के बच्चा खेलता है, वैसे हम भी खेलते रहे। भगवान ने यहां तक कह दिया है कि खेल को छोड़ना नहीं है, खेल तो अच्छी तरह से खेलना है, मगर मन उसमें नहीं बन जाए, मन से आप अलग रहो। यहां पर भी यही कह दिया, मन और भोगों से आप अलग हो जाओ, जैसे बचपन में थे वही बचपन को फिर से याद कर लो। हमारे जीवन में जो अनुभूत बात है उसी को यहां पर दोहराने की है। बचपन में जैसे आप मुक्त थे वैसे मुक्त, बचपन में आप जैसे निष्पाप थे वैसे निष्पाप हो, बंधन में आप जैसे अबुद्ध थे वैसे ही अबुद्ध और शांत हो। तो जीवन का आरंभ जैसे बहुत ही सयाना सुंदर आनंदकारी सुखप्रद था, वैसे ही बच्चे की तरह मुक्त होता है। हमारे जीवन का अंतिम छोर है उसको भी शांत और समृद्ध बना देते, जीवन का अंतिम सांस ऐसे जाए कि मैं अपने स्वरूप में मिल रहा हूँ, मैं सदगति प्राप्त कर रहा हूँ, मैं भगवत स्वरूप में लीन होने के लिए जा रहा हूँ, वहां कोई बंधन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। मृत्यु के समय हमारा अंतिम सांस शांति वाला हो रहा है, हमारे स्वस्वरूप में हम लीन होते जा रहे हैं, वैसी प्रतीति होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए प्रारंभ से उसके उसका हमें अनुभव करना पड़ेगा, उसके उसको सीखना पड़ेगा, अभी से उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। कि जाके हमारा अंतिम सांस दुखी ना हो, पीड़ा देने वाला ना हो, हमारी दुर्गति हो, ऐसा हमारा अंतिम सांस कभी ना हो। अंतिम सांस स्वस्वरूप में, प्रभु में, शांति में और नित्य मुक्त की तरह हो जाए, बच्चे की तरह छोड़ दे अपने जो हमारे जितनी हमारे जितने दुराग्रह हैं, हमारी जितनी इच्छाएं, उसमें से छोड़ते बंधन मुक्त हो जाओ। भगवान तो आगे कहेंगे जो कुछ मिला है उसको साहजिकता से उसका स्वीकार करके, गृहस्थी में बैठे हुए भी सन्यासी जैसा त्याग का जीवन जी लो, जो कुछ मिला है उसमें संतोष मान लो। जैसे सन्यास जीवन में जो भिक्षा मिल गई, रुखी सुखी रोटी ले ली, उधर पूर्ति हो गई, अब नमक की भी आवश्यकता नहीं है, जो मिल गई रोटी दो और उधर पूर्ति हो गई, तो महाराज हमें मिर्ची भी नहीं चाहिए, नमक भी नहीं चाहिए। जैसे सन्यास जीवन है और संतोष होता है, शांति में होता है, वैसे गृहस्थ में भी अपनी उत्तरावस्था में उसको सन्यासी के रूप में बना लो। कोई इच्छा नहीं करे, दांत नहीं है तो उसको दाल में भिगो के भी खा लो, लेकिन कभी भी किसी की अपेक्षा मत करो कि मुझे हलवा मिल जाए, दांत नहीं इसलिए खाने। अपेक्षा और उपेक्षा दोनों ही जीवन में दुख और अशांति देने वाली है। जो है उसकी उपेक्षा नहीं चाहिए, निकलना है, खराब है, मुझे नहीं, हटाओ इससे, अबे जो पड़ा हुआ उससे दुखी हो, और जो नहीं है उसको ये मिले वे मिले, रोटी सुखी है, दांत नहीं है, कैसे चबाऊंगा, मुझे हलवा मिलना चाहिए। अरे भाई, रोटी से उसको भिगो करके एक बार अपनी पेट की भूखों को तो शांत कर ले, उसकी उपेक्षा क्यों कर रहा है, तेरे पास पड़ा हुआ साधन। बस जीवन का अंतिम लक्ष्य यही, कभी उपद्रव मत करें, कभी जो प्राप्त है परिस्थिति के अंदर कभी भी अपने को उलझाए नहीं, अशांत न करें, दुखी न करो। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से उद्धव जी को जीवन की उत्तरावस्था कैसे जिए उसका बोध कर रहे हैं। हमारे जीवन की उत्तरावस्था माने वृद्धावस्था, हम हमारे वश में कर ले। जैसे जीने का सीखना पड़ता है, वैसे मरने का वो सीखना पड़ता है। जिसको मरना आया वही सच्चा जी सका है, उसका परिणाम मृत्यु के समय पता चलता है कि व्यक्ति कैसा जिया है, उसका जीवन कैसा था, वो मृत्यु के ऊपर से पता चलेगा। जिसकी मृत्यु अच्छी है तो समझ लेना वो जीने में सफल था, और जो अपने मृत्यु के समय फंसा हुआ रहता है, अशांत रहता है, दुखी रहता है, समझ लेना अपने जीवन में उसको कभी भी शांति भी नहीं मिली और जीने का भी नहीं आया। यहाँ पर ब्रह्मा जी स्वयं सनकादिक देवों को का सनकादिक ऋषियों का प्रश्न है, उसका उत्तर देते हुए जो बात बताई, मन और विषयों की अलगता के लिए जो उन्होंने बताया, बस अपने चैतन्य के रूप में स्थित हो जाए तो मन भी नहीं रहेगा और विषय भी नहीं रहेगा। जो कुछ है मन के लगाव के कारण है, जहां पर मन लगा नहीं थी वहां पर भटक गए थे, दुखी हो गए, रोने लग गए, लेकिन धीरे 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 मन वहां से हटता जाता है, दुख भूल जाते हैं, रोना चला जाता है। लगाव है मन का, जल्दी नहीं हटेगा, क्योंकि जन्म जन्म के संस्कार भरे पड़े हुए हैं। लेकिन वो मन का भी एक स्वभाव है, भगवान के कृपा और एक आशीर्वाद है। मन जितना भी याद करता है, संबंध बांधता है, लेकिन भगवान ने एक औषधि हमारे अंदर ऐसी रख दी है कि मन धीरे 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 जा करके भूल जाएगा। हमारे किसी स्वजन की, आत्मीय की मृत्यु हो गई, चला गया, बड़ा दुख होता है, नहीं सहन कर पाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसी औषधि रख दी है कि धीरे धीरे मन भूल जाता है। वो भूलने का आशीर्वाद प्रभु ने नहीं दिया होता तो हम रो रो करके मर जाते, जी भी नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु दयालु है, कृपालु है। मनुष्य अपना जीवन भटकाता जाता है, मन को बहलाता जाता है और दुखी भी होता है, रोता भी है। परंतु जब भगवान देखते हैं कि तो फंसा हुआ है, फंसने वाले को मुक्ति देना, यही तो प्रभु का काम है। हम फंस के दुखी होते हैं, रोते हैं, बड़े भारी हम अशांत हो जाते हैं, लेकिन प्रभु हमें धीरे धीरे समय के बहते बहते हमको भुला देता है, भूल भी जाते हैं, फिर हम स्वस्थ भी हो जाते हैं। मन में न व्याकुलता रहती है, न अशांति होती है। बस भगवान भी यही कह रहे हैं हम सबको, ब्रह्मा जी भी सनकादिक ऋषियों को भी यही बात कर रहे हैं, भगवान दत्तात्रेय भी यदु राजा को यही बता रहे हैं। मन से जब तक पकड़े रखोगे तब तक कभी शांति नहीं मिलने वाली। और हम देख रहे हैं छोटी छोटी बातों को ऐसी पकड़ के रखते हैं, नहीं छोड़ते, दुखी होते, चाहे कुछ भी हो जाए, मार खाना तो मार भी खाएंगे, मरना हो तो मरना मर भी जाएंगे, मगर हाथ की मुट्ठी छोड़ेंगे नहीं। ये मन मरकट ऐसा है कि अपनी मुट्ठी नहीं छोड़ता। मन रूपी बंदर छोटी सी बात में मुट्ठी पकड़ ली, फंस गई मुट्ठी, वो घड़े से बाहर निकाल ही नहीं सकता। अरे मुट्ठी छोड़ दो, हाथ अपने आप छोड़ जाए। हमारा जीवन भी जब भी मन के किसी विचारों की मुट्ठी पकड़ ली छोटी सी बात में, कुछ उसमें सार नहीं है, उसमें से कुछ भी मिलने वाला नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों में मन अपनी बराबर पकड़ लेता है। और वो पकड़ जब तक नहीं छूटेगी तब तक हम शांत नहीं हो सकते, हम सुखी भी नहीं हो सकते। प्रभु यही बात बता रहे हैं, हम हमारे में आत्मस्थ हो जाए और जो कुछ बातें हैं मन की उसके तरफ न बंधे न जाए, बहने जाए। मन तो बार बार आपको बहलाएगा, चलो उधर खाओ, ये देखो, ये भोगो, ये। और जैसे जैसे मन का मानते जाओगे वैसे वैसे जीवन में फंसते जाओगे। और देखते हैं जीवन फंस भी रहा है, फंसा भी है, और फंसा हुआ रहेगा भी। क्यों? कि हमने मन का मान लिया, मन के मालिक होने के जगह मन को हमारा मालिक बना दिया, हम उसके गुलाम बने हैं। प्रभु कह रहे हैं उद्धव, मन और विषयों से अलग होना है तो हट जाओ, उसमें मत फंसो, हम स्वयं ही उससे अलग हो जाए। न मन से भी हमारा कोई काम है, न विषयों से। लेकिन विषयों पर मन है, मन ने विषय को पकड़ा है, हम भी जकड़ गए, जेल में आ गए। प्रभु कहते कि दोनों को छोड़ो, पड़े रहने दो मन को और विषय को भी वहां छोड़ दो, लेकिन कठिन है। आप मन को छोड़ देंगे लेकिन मन आपको नहीं छोड़ेगा, क्या करें? मन आपको नहीं छोड़ेगा, हैरान परेशान करता ही रहेगा। हमारा मन है फिर भी हमको दुखी और अशांत करने के लिए ही रहता है। जैसे चूहे घर में रहते हैं, खाते पीते हो, बड़े हो जाते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं, खाते हैं भी घर का और घर की नींव भी खोदते, उसको कोर कहते हैं। घर का खाना और घर का खून। हमारा मन भी एक चूहा है, हमारे में पड़ा रहता है, आश्रय भी हमारा है और हमारे शरीर रूपी मकान को गिराने वाला भी वही है। जितने भोग भोगने की इच्छा मन को होती है इतना ये घर जल्दी कमजोर हो जाएगा, जल्दी गिर जाएगा। मन की नहीं मानोगे और अपने अपने स्वरूप में रहेंगे तब तक ये मकान, हमारा मकान भी, हमारा घर भी मजबूत रहेगा, जल्दी कमजोर नहीं होगा। बस यही कह देते हैं भगवान, ये दोनों को छोड़कर अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित हो जाओ, न दुख रहेगा और शरीर में न अहम भाव रहेगा। और जब भी शरीर में से अहम भाव छूट गया तो बस कोई कारण ही नहीं रहेगा आपको, अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, न कहीं दुख है, कहीं पर भी आपको दुख नहीं दिखाई देगा, न कोई बंधन रहेगा। अपने स्वरूप में जाकर के बैठेंगे तब ही ये बाहर के सभी बंधन, सभी संबंध अपने आप छूट जाएंगे। यहाँ पर संकादिक ऋषियों का, उनका भोग और योग का जो संदेह था वो मिट गया, इतनी ही बात में मिट गया। संदेह था, प्रश्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी ने तो नहीं दे सके, भगवान स्वयं हंस रूप बन करके इनको दे दिया। बस जीवन में मन के ऊपर हमारा आधिपत्य जब भी आ जाएगा तब हम मुक्त हो जाएंगे, स्वच्छ जीवन जी रहे, स्वच्छंद आत्म रूप में वो प्रतिष्ठित हो गए सनकादिक ऋषि। ब्रह्मा जी को भी आनंद आ गया। भगवान कृष्ण ने कहा है कि हमारे शास्त्रों का जो ज्ञान है, एक होने पर भी वो ज्ञान एक हो जाए फिर भी उसकी ग्रहण करने करने वाले की शक्ति अलग अलग होती है। पड़ा है कुछ भी चीज, कोई क्या लेगा, कोई क्या उठाएगा, अलग अलग जिसको अपने मन में जो अच्छी लगेगी वो चीज उठा लेंगे वहां से। ऐसे शास्त्र का, हमारे धर्म का जो उपदेश बोध है वो एक है। एक होते हुए पर भी जिसकी जैसी रुचि होगी वैसा ही उसका उसमें से उतना ही वो ग्रहण करेगा। रुचि नाम वैचित्र्या। हम भोजन करते हैं, बड़ा अच्छा भोजन सबको निमंत्रित किए हैं, बहुत कुछ बना हुआ पड़ा है और आज तक आजकल की जैसी व्यवस्था है भोजन की, तो आपको जो जो रुचि है वो ले लो, लिखा हुआ था है निमंत्रण में, स्वरुचि भोजन आपको मिला है, मिलेगा, आप जो चीज चाहे वहां से उठा के ले करके खा लो। बस ये ज्ञान, ये सत्संग, वो भी स्वरुचि के अनुरूप, आपको जो अच्छा लगा वो ले लो। अपना जीवन जीने के लिए जिसमें से हमको शांति मिल रही है, हमको मार्ग मिल रहा है, हमें उसमें से स्वाद आ रहा है, उसको ले लो। ज्ञान तो बहुत ही कठिन है, कहत कठिन, समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, सब कुछ कठिन है, सब पल्ले नहीं पड़ेगा, जितना पल्ले पड़ा उतना ही, और पल्ले पड़ने के बाद जितना हम समझ सके और समझ के बाद जितना हमारे अनुकूल है उतना ही ले लेना है। सब कथा तो बहुत सुनते हैं, 7 दिन 9 दिन कथा सुने, परंतु उसमें से एक ही छोटा सा वाक्य हमारे दिल में चोट लग गई, उसको हमारी गांठ मार के ले लिया, पकड़ लिया, बांध लिया उसको जीवन के लिए, बस बहुत है। और एक ही वाक्य में समझ जाती पूरी जिंदगी, तो पूरा जीवन बदल जाता है। तो सत्संग में सब काम नहीं आते, घर में अनाज लाते हैं, चीज वस्तु लाते हैं उपयोग करने के लिए, खरीद के लाते हैं, लेकिन वो चीज पूरी की पूरी काम नहीं आती है। उसमें से कचरा निकाल देना पड़ता है, कंकर निकाल देना पड़ता है, छिलके या उसके बीज भी निकाल देने पड़ते हैं, फिर बाद में उसका उपयोग। वैसे जीवन में, और जो हम सुनते हैं सत्संग, उसमें से जो हमारे अनुरूप सुपाच्य है उतना ही ले लो, और रुचि है इतना है खा लो, बाकी छोड़ दो। जिसकी जितनी जैसी रुचि होगी उतना ही उसमें से प्राप्त होगा। भक्त है वो भक्ति लीला ले लेगा, ज्ञानी है वो ज्ञान ले लेगा, जो ध्यानी है वो उसमें से ध्यान की प्रक्रिया ले लेगा। सब अपने अपना जो रुचि है, अच्छा लग रहा है उसको धर्म में से शास्त्र में से इतना ही लेता रहे, और एक ही लेकर के अपना जीवन बना लेता है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही पकड़। नाम जप करना है तो सिर्फ नाम जप करते जाओ, करते जाओ। भजन करना है तो भजन ही करते रहो। चैतन्य महाप्रभु नाम संकीर्तन ही करते रहते थे, उसमें भगवान में लीन हो गए। नरसी और मीरा भजन गाते रहते थे और भजन गाने में प्रभु में लीन हो गए। योगी अपने स्वरूप में लीन हो जाते थे, ध्यान करते करते आत्मस्वरूप। जो जिसकी रुचि है, शास्त्र में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, धर्म के पास सब शक्तियां, परंतु हम हमारी रुचि के अनुरूप उसमें से ले, यही है हमारा धर्म। ग्रहण करने की अलग अलग रुचि होती है, क्योंकि सबकी वृत्ति अलग होती है। मनुष्य है, गंधर्व है, देवता है, किन्नर है, राक्षस भी है, जो जैसी रुचि, और अपने अपनी प्रकृति के अनुसार वह अलग अलग प्राप्त करते हैं। भगवान यहाँ पर उद्धव जी को ध्यान योग बता रहे हैं। जब भी हम हमारे में संभल जाएंगे तब ही जा करके शांति प्राप्त हो सकती है। बाकी तो दुनिया का कचरा भी है, हमारा जीवन भी है, उसमें से निकाल देना चाहते हो तो कचरे से निकाल भी सकते हो, और नहीं तो कचरे के अंदर फेंक भी सकते हो। प्रकृति अलग अलग जैसी होगी, ऐसे संस्कार भी अलग अलग होंगे। किसी की रजस कोई होगा, कोई तामस होगा, कोई सात्विक भी होगा। तो सत्वरजतम जो हमारे में पड़ा हुआ संस्कार है, पड़ी हुई जो हमारी प्रकृति है, क्योंकि जीवन मिला है वो मिश्रण वाला मिला है, और न्यूनाधिकता सब में रहती है। जिसमें सत्व प्राधान्य है तो रजो तमोगुण कम होगा, जिसमें तमोगुण की प्राधान्यता होगी तो उसमें रज और सत्व और कम होगा, और जो रजोगुणी है उसमें तमस और रजस और कम हो जाएगा सात्विक। तो ऐसे जीवन भिन्न भिन्न होने के कारण, रुचि भिन्न भिन्न होने के कारण, तो उसका स्वभाव अलग बन जाता है, उसकी ग्रहण शक्ति भी अलग अलग हो जाती है। जैसे डॉक्टर है तो अपनी विद्या का ही लेगा, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, सब अलग अलग लेंगे, सब ज्ञान सब प्राप्त करेंगे, लेकिन जो अपने काम में आएगा उसी को पकड़ेगा, दूसरे को छोड़ देगा, क्योंकि हमारा विषय नहीं, हम उसको लेकर के क्या करेंगे। जो जीवन का व्यवहार जिस प्रकार भौतिकता में से अपनी रुचि के अनुरूप ग्रहण करते हैं, वैसे ही हमारा मन, हमारी रुचि शास्त्र में से, धर्म से, में इसमें से भी इतना ही लेता है जितनी हमारी रुचि, जैसी हमारी रुचि हो। खाने में भी क्या करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, हम नहीं खाएंगे, हमको नहीं लेना है, चीज अच्छी लगती है तो उसको ले ले, बस। भगवत प्राप्ति में का मार्ग भी इसी प्रकार का है। हमारी जो जैसी रुचि होगी उसको लेकर के हम आगे बढ़े। भूख सबको लगी, खाने की चीज चाहिए, लेकिन क्या हमारी रुचि के अनुरूप खाना है? ऐसे भगवत प्राप्ति भी भजन करना है, वो भूख सबको है भगवान की, लेकिन अपने अपने रुचि के अनुरूप कोई शक्ति को, कोई शिव को, कोई विष्णु को। रुचि नाम वैचित्र्य। हम हमारे स्वभाव और ग्राह्य शक्ति, ग्रहण शक्ति के अनुरूप उपासना को ले। भगवत प्राप्ति सबकी इच्छा है, सबका एक लक्ष्य। भगवत प्राप्ति के द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य एक ही, सबको जीवन भगवतमय बनाना है। सबको कोई न कोई साधन की आवश्यकता है, लेकिन सबके पास जिज्ञासा एक ही है कि जीवन में कोई न कोई आधार प्राप्त कर लेना है, कि जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को भी बचा लें और मृत्यु को भी सुधार लें। कुछ भी जरूरत है, बिना उसके आधार के बिना हम चल भी नहीं सकते, जी भी नहीं सकते। भगवान का, धर्म का आश्रय, वही हमारे जीवन के लिए एक आधार बन गया। और जिसके पास सत्संग, भक्ति, धर्म, ध्यान, जप, भजन का आधार नहीं है, उसका जीवन ऐसे ही संदेहमय होता है, उसका जीवन असुरक्षित होता है। कब कहाँ जा करके भटकेगा, भटकेगा क्या करेगा, कहाँ पर जा करके फंस जाएगा? कहीं पर भी फंसा हुआ हो तो उसको बचाने वाला एकमात्र धर्म का साधन। और एक भी समझ लो, उसमें से सब हजम नहीं होगा, और जो कुछ बना है वो सब तो खा नहीं सकते। हमारी पतल में जो, हमारी थाली में जितना आया उतना ही खाएंगे, और उसमें भी परोसा के सब कुछ, लेकिन हमारी रुचि के बाकी छूट भी जाएगा कि अब नहीं खाना है, तृप्त हो गए। और खाने के बाद भी शरीर में जो हजम हो गया उसमें से सत्व निकल गया, वही बाकी तो कचरा निकल जाएगा। तो सब में से थोड़ा सा ही हम प्राप्त कर सकते हैं, और मिलता भी है इतना ही। तो वास्तविकता यहाँ पर है, सब कुछ होते हुए भी उसमें से प्राप्त तो हमें बहुत थोड़ा ही होता है। और बस इतने एक ही वाक्य के द्वारा जीवन में परिवर्तन आ जाता है, बस एक ही वाक्य। वाल्मीकि का क्या हुआ? नारद ने जाकर के इतना ही पूछा कि जो तो पाप करता है और जो लूट के ले जाता है, वो दोनों में भागीदार किस में और कितने? उस बस एक ही वाक्य उत्तर मिला स्वार्थियों से, स्वजन स्वार्थियों से, कि तेरे लूटे हुए माल में हम भागीदार है, तेरे पाप के भागीदार हम। चोट लग गई, पूरा जीवन पलट गया, एक लुटेरा ऋषि बन गया। तात्पर्य बस इतना ही समझो, सब कुछ काम नहीं आता है, बस उसमें से थोड़ा सा ही और एक ही बात ज्यादा। गोसाई जी को क्या हुआ? तुलसी जी को रत्नावली इतने ही बोल गई, जितना मेरे में आसक्त हो इतने प्रभु में रहते तो कब के प्राप्त हो। एक चोट लग गई, निकल गए, निकल पड़े प्रभु प्राप्त। औषध थोड़ी सी होती, उसको कटोरी भर भर के या थाली भर के परोसी नहीं जाती और खाया भी नहीं जाएगा। औषध तो एक मात्रा होगी, ले लो पूरा रोग निकल जाए। जो तो भवरोग है हमारा, जीते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, भव 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 जन्मो, पैदा हो जाओ पैदा हो जाओ, भवरोग है। वो भवरोग को मिटाने के लिए, हटाने के लिए एक ही मात्र औषध, और वो भी छोटा सा, देने वाला कौन है? श्रीमद् गुरुम वैद्यम। एक गुरु वैद्य है कि जो वो औषधि देगा, कौन सी? एक जीवन मंत्र दे दे, बल पकड़ ले। मंत्र पकड़ने का, एक ही मंत्र पकड़ने की आवश्यकता इसलिए है कि जिस वैद्य के पास जा रहे हैं उसमें सबसे पहला, पहले उसको विश्वास रखना पड़ेगा। हमको देख करके, हमको जांच करके वो औषधि देगा, वो हमारे रोग को निकालने के लिए ही होगी, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना पड़ेगा। और डॉक्टर भी सफल होगा तो वही औषधि देगा जो उसके अनुकूल है, फिर हम उसमें शंका नहीं करते क्या दिया है। हमको डॉक्टर के ऊपर विश्वास है, जो औषधि उसने दे दी हम लेने लगे श्रद्धा पूर्वक, उसमें कोई शंका नहीं। बस ऐसे ही धर्म के पास से जो कुछ हमें मिल गया है, सदगुरु ने हमको मंत्र रूप जो औषधि दे दी है उसको ले लिया, खाते रहो, पूछो मत कि कैसे बनी है, क्या होगा इससे। आप डॉक्टर को कभी पूछते हैं? कभी पूछा? लिख दिया ये दवाई है, ले लो, ले ले लो। विश्वास श्रद्धा। अब एक शरीर को के रोग को मिटाने के लिए एक सामान्य डॉक्टर जो दवाई लेता है, देता है, उसके ऊपर श्रद्धा करके ले लेते हैं, खाते अच्छे होने के उसमें विश्वास है, आशा है। तो वैसे एक सदगुरु भी जीवन में एक औषधि दे रहे हैं, लो है। यही मंत्र तुम्हारा कल्याण करने वाला है, पकड़ लो। मगर इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी एक डॉक्टर में श्रद्धा है, विश्वास। हमको डॉक्टर में विश्वास है, डॉक्टर की औषधि में विश्वास है, एक वेद मंत्र के अंदर विश्वास नहीं है, गुरु में विश्वास नहीं है, क्या करेगा? समय तो सब कुछ, सब मांगते। एक छोटे से दिए हुए एक बोध, एक उपदेश, व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, वो अपने स्वस्वरूप को प्राप्त कर, उसका जीवन ही मार्ग ही बदल जाता है, उसका भटकना बंद हो जाता है। भवरोग के लिए प्राप्त हुई ये औषधि है कि जिसके द्वारा हम हमारे जीवन को भी बचा सकते हैं और मृत्यु को भी सुधार सकते हैं। भगवान का उद्धव जी से यही कहना है कि उद्धव, जैसी भी प्रकृति हो उस प्रकृति के अनुसार उन लोगों में, उन प्राणियों में भेद होता है, अलग अलग रुचि के अनुरूप वो भेद हो, और उसमें भी दृढ़ता, उसके अंदर हमारा कितना विश्वास है, हम स्वयं कितने उसके पात्र है वो भी देखना। पात्र नहीं है और मिला है, क्या होगा? वो गिर जाएगा, जमीन पर गिर जाएगा। जो जिसकी जितनी क्षमता है
योग्यता है उतना ही उसको दिया जाता है। हम यहाँ पर जहद अजहद लक्षणा की बात करने लग जाएंगे, पात्र के आधार पर